नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सराहना की। कायस नीति ने अरुणाचल प्रदेश को सिर्फ एक सीमावर्ती राज्य के तौर पर नहीं बल्कि भारत के रणनीतिक गेटवे और सांस्कृतिक सीमा पर तौर पर पहचान भी ली है। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्री पीडी सोना ने विधायक और सलाहकार मीपू मोहित के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश लोअर सुबनसिरी जिला स्थित सेंट क्लेरेट कॉलेज जीरो के सोशल वर्क विभाग में IPS अधिकारी रॉबिन हिबू को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपने चरम पथ पर चल रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ती जा रही है। श्री मोदी ने कहा है कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इससे सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर के सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
श्री वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए यह पहल शुरू की गई है।
करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सराहना की है। कहा कि इस नीति में अरुणाचल प्रदेश को सिर्फ एक सीमावर्ती राज्य के तौर पर नहीं बल्कि भारत के रणनीतिक गेटवे और सांस्कृतिक सीमा के तौर पर पहचान मिली है। उन्होंने कहा है कि तिब्बत, भूटान और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने और 1080 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने की वजह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश भारत के रणनीतिक और विकास से जुड़े विजन का एक अहम स्तंभ बनकर उभरा। करता है। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार 12 साल की सेवा पूरी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए श्री खांडू ने इस कार्यकाल को बदलाव लाने वाले शासन, दूरदर्शी नेतृत्व और अभूतपूर्व विकास का दौर बताया। इस दौरे में अरुणाचल प्रदेश और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की दिशा में को पूरी तरह से बदल दिया है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती राज्य के विकास के लिए भारत सरकार से मिले लगातार समर्थन, मार्गदर्शन और प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया। राज्य के पर्यटन मंत्री पीडी सोना ने विधायक और सलाहकार मोपी मिहू के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से का मुलाकात की। श्री सोना ने कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट में बैठक में राज्य की चल रही पर्यटन पहलों पर विचार विमर्श किया गया और पर्यटन के बुनियादी ढांचे, गंतव्य विकास और अरुणाचल को एक अद्वितीय और टिकाऊ पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं के बारे में चर्चा की गई। गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिला स्थित सेंट क्लारेट कॉलेज जीरो के सोशल वर्क विभाग में आईपीएस अधिकारी रोबिन हिबू को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। कॉलेज की ओर से जारी इस प्रेक विज्ञान के मुताबिक दिल्ली पुलिस के जरिए भेजे गए प्रस्ताव के बाद मंत्रालय ने 20 मई को एक आधिकारिक सूचना जारी कर ये मंजूरी दी थी। अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमले शुरू किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जलदमनों मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए हैं। इसमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान की मीडिया ने बंदर अब्बास, कैशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों में विस्फोट की सूचना मिली है।
मिलिट्री कॉन्फ्रेंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जोर्दा में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जोर्दान के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जोर्दान या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
सरकार ने साइबर अपराधों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित की जाएगी। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं, प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।